सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सयलोवसगणिवहा संवरणेनेव जस्स फिट्टन्ति पाशस्वतस्सनमिं पाशनुयो अम्परु वेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देहुला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह जो 13वीं पुस्तक पंचम वर्गणाखंड, उसमें कर्म अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है। हम अभी पृष्ठ 104 पर आ गए हैं। इसमें भी जो 6 प्रकार के कर्म हैं, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, इरियापथ कर्म, तप कर्म और क्रिया कर्म, ये जो 6 हैं, उसमें सभी अनुयोग द्वारों की बात होगी। सत, फिर संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबहुत्व। और इनमें फिर ओघ की अपेक्षा यानी सामान्य से और आदेश की अपेक्षा यानी मार्गणाओं में इसको घटित करके दिखा रहे हैं। अभी 104 पृष्ठ पर वेद मार्गणा के अनुसार हम देख रहे हैं। देखो अपना विषय चल रहा है यहाँ से, हाँ, स्पर्शन अनुगम की अपेक्षा बात चल रही है। क्षेत्र की बात हमने देखी थी, क्षेत्र और स्पर्शन में क्या अंतर है? तो क्षेत्र तो वर्तमान काल संबंधी उसके या तो रहने का ठिकान, कहाँ तक विहार कर सकता है, कहाँ तक मारणांतिक समुदात हो सकता है, उसकी अपेक्षा बात होती है। और स्पर्शन में अतीत काल की अपेक्षा है। स्पर्शन में तो वर्तमान और अतीत दोनों आते हैं, तो अतीत काल तो अनंत चला गया है, तो अलग अलग जीवों ने मारणांतिक समुदात किए हुए या वो जन्मे हुए, वो सब इकट्ठा कंसिडर करेंगे तो उसका जो स्पर्शन कहलाता है। अब यहाँ हम स्पर्शन में देख रहे थे, कल जो बात आई थी 8/14 और 9/14 की, तो उसमें कौन से जीव कहाँ तक जा सकते ऐसी बात चली थी। तो यहाँ मुख्यतः तो भवनत्रिक, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, वो नीचे कहाँ तक जाते हैं, तो तीसरे तक जाते हैं, और ऊपर अपने अपने स्वर्गों में तो जाते हैं, परंतु अन्य देव ले जाए तो 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। वो अपेक्षा वहाँ लेनी थी। हम तो सोलहवें स्वर्ग को ही नीचे भेजते थे, तो ऐसा नहीं है। भवनत्रिक आदि जो है, सौधर्म, ईशान वाले हैं, वो नीचे तीसरे तक जाते हैं और ऊपर 16वें तक जाते हैं, उसकी अपेक्षा वो क्षेत्र और स्पर्शन निकालना। और उन्हीं की अपेक्षा एक इंद्रियों में जन्मने वाले मारणांतिक समुदात करने वाले की अपेक्षा 9/14 कहा था। अब हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ वेद मार्गणा में बात चलेगी 104 पृष्ठ पर, उसमें अभी ये सारे जो कर्म है वो लगा के बताएंगे, उसमें स्पर्शन देखेंगे। देखो वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। जब हम स्त्री वेदी पुरुष वेदी कहते हैं तो पंचेंद्रियों को ही लेना है अकेले, नपुसक वेदी कहते हैं तो सारा ही एकेंद्रियादि जीव आते हैं, तो पूरा लोक उसमें हो जाएगा। अतीत स्पर्शन 8/14 भाग प्रमाण और सब लोक है। 8/14 भाग क्योंकि अकेले मनुष्यों की स्त्रियां नहीं लेनी है, तो देवों की भी होगी, तो अभी मैंने जो 8/14 कहा था वो वहाँ पर भी घटित होगा। और सब लोक है, सब लोक में स्त्री वेदी पुरुष वेदी कैसे लेना मारणांतिक की अपेक्षा, हाँ, क्योंकि वेदी वाले लिए ना, इसलिए वो अपगत वेदी वाला वहाँ नहीं लेना, केवली समुदाय नहीं ले सकते, मनुष्य नहीं में तो ले सकते, परंतु स्त्री वेदी कहेंगे तो यहाँ वेद का उदय है तब तक उसको स्त्री वेदी कहेंगे, बाद में उसको अपगत वेदी कहेंगे। अधक कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक है, क्योंकि अधक कर्म में औदारिक शरीर आता है तो वो पूरा ही लोक हो जाता है। तपक कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, अधक कर्म में जीवों को नहीं लेते हैं, वो औदारिक वर्गणा को लेते हैं, इसलिए वो सब लोग घटित होता है। तपक कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, इसी प्रकार यानी लोक के अर्ध असंख्यात विभाग, इसी प्रकार क्रिया कर्म का स्पर्शन भी जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इसका अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। ये कुछ उसके वो नौकर्म वर्गणाएं कहाँ कहाँ तक है ऐसा लेना, उसमें वो कितनी है, उसका क्षेत्र कितना है। देखो ये अधक कर्म का हमने जो ओघ में देखा था, ओघ निकालना, ओघ में लिखा था वो क्षेत्र के समान है, अभी क्षेत्र निकालना। देखो ये 98 पृष्ठ पर है, वहां बताया था प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म की द्रव्यार्थता प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है, तो सब लोक क्षेत्र ऐसा वहां कहा था। अधक कर्म का क्षेत्र भी वो तो ठीक है कि वहां औदारिक शरीर सर्वत्र पाया जाता है, परंतु मार्गणा में जब हमने घटित किया था वहां भी निकालना, भी तिर्यंच में या मनुष्य में, मनुष्य में देखते हैं 100 पेज पर। तिर्यंच गति में तो अधक कर्म हमें वो बराबर, हाँ ये पूरा लोक वो तो सिद्ध होता है, परंतु मनुष्य गति में भी लिया, देखो मनुष्य गति में प्रयोग कर्म, समावदान कर्म, इर्यापथ और तपक कर्म तो असंख्यात भाग वगैरह वगैरह लिया, और अधक कर्म में मिला क्या, हाँ थर ले सब लोक है, अधक कर्म को अलग बताए, सब लोग उसका क्षेत्र है ना, उसकी द्रव्यार्थता कैसे समझने, द्रव्य किसको कहना उसको, नौकर्म वर्गणा, तो वो नौकर्म वर्गणा कितनी है या उसके वो उसकी अपेक्षा से वो द्रव्यार्थता लेना। उस जीव की जो वर्गणा है उसको काउंट करना है, तो वो वर्गणा के भी वो उसका क्षेत्र बहुत ज्यादा हो जाता है। ये दूसरा कैसे घटित होगा कि मारणांतिक समुदात में तो प्रदेश फैलेंगे, पर कर्म भले फैलेंगे परंतु नौकर्म तो नहीं फैलेंगे ना। और यदि ऐसा लेते कि बाद में वो समुदात करने की अवस्था में वो फैलते हैं तो वो भी नहीं होता घटित, वहां भी औदारिक कर्म कहाँ फैला, औदारिक शरीर तो कुछ नहीं जाते, शरीर के परमाणु तो जाते नहीं है समुद्घात में भी, जीव के प्रदेशों के साथ तेजस कारमान जाता है, औदारिक शरीर के तो वहीं रहते हैं, इसीलिए वो कितना प्रदेश रोकते हैं इस तरह से उसको ले लेना पड़ेगा। हाँ सब जीवों की अपेक्षा से तो है ही, परंतु स्त्री वेदी और पुरुष वेदी में सब लोग कैसा घटित होता है ये नहीं समझा। देखो संख्या में भी कितना लिया था हमने, इसमें जाते हम सत के बाद जो द्रव्य देखा था हमने द्रव्य प्रमाणानुगम 93 से द्रव्य प्रमाणानुगम शुरू हुआ था। अभी उसमें हम ओग की अपेक्षा ऊपर से पांचवी लाइन 93 पेज पर अधक कर्म में कितने हैं, तो वो अभव्यंश अनंत गुणे वगैरह वगैरह इतने औदारिक शरीर के नौकर्म स्कंध है, उसको द्रव्य कहा था। अभी आदेश की अपेक्षा उसको ही देखते हैं हम, नीचे से दूसरी लाइन। अधक कर्म की द्रव्यार्थता अनंत है क्योंकि औदारिक शरीर के अनंत नौकर्म स्कंधों का ग्रहण किया गया है। तो ये अनंत की अपेक्षा से हो सकता है, अभी वो क्षेत्र मुझे भी ख्याल में नहीं आया बराबर, वो अनंत है इसलिए वो सब लोक लिया है। अधक कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक है। अभी हम मूल पेज पर आते हैं 104 पर। ये जो वेद मार्गना का हम पढ़ रहे थे उसमें तीसरी लाइन, तपक कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इसी प्रकार तपक कर्म तो मनुष्यों में ही है ना, हाँ, तो उसकी अपेक्षा वो होगा। इसी प्रकार क्रिया कर्म का स्पर्शन भी जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेष है कि इसका अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है, देवों की अपेक्षा सम्यक दृष्टि की उसकी अपेक्षा बताया है। नपुसक वेद वाले जीवों के वहां संभव पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी हमने देखा था पूरा लोक है नपुसक वेद, वो एक इंद्रियों में भी है ना। इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का अतीत स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा समुद्घात करना कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। अपगत वेद वाले जीवों के वहां संभव पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। यहाँ अपगत वेदी वालों को अलग निकाला, इसलिए ऊपर स्त्रीवेदी पुरुषवेदी में तो पंचेंद्रियों को ही ग्रहण करना था। स्त्रीवेदी पुरुषवेदी में मनुष्य तीर्यंच और देव सब आ गए, देव नहीं वो अधक कर्म में, हाँ, परंतु अधक कर्म में तो मनुष्य तीर्यंच लेना, देव को नहीं लेना। फिर पूरा लोक जो लिया है वो ख्याल में नहीं आया। वो कितने परमाणु है उसकी अपेक्षा से ही बताया होगा, क्योंकि नौकर्म स्कंद अनंत है इसलिए वो सब लोक लिया। द्रव्यार्थता यानी द्रव्यों की संख्या वो अनंत है, और प्रदेशार्थता भी अनंत है, परंतु वो रोकते कितना क्षेत्र तो असंख्यात ऐसा हो सकता है। हाँ, वो तो तिर्यंच मनुष्य में ही है। हाँ, प्रदेशों की संख्या तो पूरे लोक में है ऐसा। हाँ, कषाय मार्गना के अनुवाद से चारों कषाय वाले जीवों के सब पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है, और कषाय रहित जीवों के यथासंभव पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। हाँ, अतीत में ज्यादा होते हैं क्योंकि अतीत में इतने जीव हो चुके हैं, तो मारणांतिक समुद्घात है, उपपाद है, अन्य अन्य, इसलिए पूरा पूर्ण क्षेत्र। जैसे देखो, एक जीव मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उतना ही क्षेत्र रोकेगा, खाली वो सिंगल जो लाइन है, और इतने अनंत जीव अलग अलग जगह से करेंगे तो वो पूरा ही 8/14 जो किसका क्रिया कर्म का हाँ अतीत की अपेक्षा 8/14 हो जाता है। हाँ तो 8/14 है और पूरा लोक कितना है 343। हाँ इसलिए वो संख्यात्वा भाग हो जाता है। फिर अधक कर्म का स्पर्शन ओघ के समान है। ओघ में देखा था सब लोग है। अरे मैं नीचे चली गई, एक सॉरी, मैंने ज्ञान मार्गणा, एक एक मिनट, मैंने नीचे की लाइन पढ़ी भूल से। ये तो हो गई कषाय रहित जीवों की बात, अभी ज्ञान मार्गणा को पढ़ेंगे। ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मति अज्ञानी और श्रुता ज्ञानी यानी अभी मिथ्या ज्ञानी जीव है, जीवों में सब पदों का अतीत और वर्तमान कालीन स्पर्शन क्षेत्र के समान है यानी पूरा लोकों का। विभंग ज्ञानियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि विभंग ज्ञानी का वर्तमान जब कहते हैं तो वे नारकी है, देव है, मिथ्या दृष्टि और मनुष्य तिर्यंच मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञान वाले। और अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण। वो तो असंख्यात भाग हो जाता है अतीत में, वो मारणांतिक लेते हैं ना वो, और अलग अलग जगह में है। अतिस्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण, कुछ कम 13/14 भाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण है। सब लोक में भी मारणांतिक वगैरह ले सकते तो सब लोक घटित होगा। क्या कहते 13/14 नीचे नारकी है, 13/14 भाग प्रमाण विभंग ज्ञानियों का। विभंग मिथ्या दृष्टि जो है ना, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि, अभी संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि है तो वो मारणांतिक समुदाय तो होगा। विभंग उपपाद में तो नहीं लेना क्योंकि जन्मते समय तो नहीं, यानी वो पहले समय वाला है वहां तो नहीं होता है, तो मारणांतिक समुदाय तो उनके हो सकता है। तो नरक से भी करने वाले ले लेना उसमें, ऊपर के तो स्वर्गों के लेने नहीं है। परंतु ऊपर ऊपर मारणांतिक समुदाय करने वाले ऊपर ऐसा है ना, तिर्यंच है, मनुष्य है और वो पृथ्वी कायिक में जाने वाले हैं, ऐसे ले सकते हैं। आपने कुछ कहा? सब लोक प्रमाण है वो तो ठीक, मारणांतिक समुदाय पूरे लोक में कहीं भी हो सकता है, इसलिए उसको लिया सब लोक प्रमाण। आप क्या कहते 13/14 में? ये तो 8/14 तो देवों की अपेक्षा बताई है खास। कम जो होता है वो नारकियों, हाँ हाँ, परंतु फिर 13/14 ऊपर भी लिया ना उसने। नारकी तो नहीं जाएंगे, नारकी जाते ही नहीं केंद्रियों में, देव जा सकते हैं। तो देव देव है जो भवनत्रिक है या सौधर्म वाले हैं, वो जा सकते हैं ऊपर के स्वर्गों, ऊपर के इसमें, ऊपर की पृथ्वी में। नहीं होता है ये नीचे के नरकों का पृथ्वी का एक नहीं होता, ऐसा कुछ है, ये ऐसा नियम है। ऊपर की पृथ्वी का हो सकता है, नीचे के नहीं। हाँ ये हमने पढ़ा था कहीं। देखो अभी अधक कर्म का स्पर्शन ओघ के समान है, वह हमने पूरा लोक देखा था। आविनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में सब पदों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है और अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। इरियापत कर्म और तपक कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। तो क्षेत्र में हमने देखा इरियापत कर्म तो पूरा लोक भी हो सके, ये लोक का असंख्यात भाग भी होगा, फिर असंख्यात बहुभाग भी होगा और पूरा लोक भी होगा। और तपक कर्म में उसमें भी ये लागू होता है क्योंकि वो 13वें वाले को भी तप होता है, उसमें वो 3 होते हैं। अधक कर्म का स्पर्शन ओग के समान है, यानी एरिया पथ और तप कर्म में अधक कर्म नहीं। अधक कर्म एक बार बताया ना उन्होंने, कभी अवधि ज्ञानी में बता रहे, अभिनिबोधिक श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी में बता रहे। मन परे ज्ञानी और केवल ज्ञानी जीवों में संभव पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। मन परे ज्ञानी भी वो लोक के असंख्यात विभाग में हो जाएगा। संयम मार्गणा के अनुवाद से संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के अपने अपने पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। संयता संयत जीवों के सब पदों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अति स्पर्शन कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। मानना थी की अपेक्षा होगा हाँ, ऊपर वो मानना थी की अपेक्षा इतना घटित होगा उनका और कुछ नहीं, 6/14 भाग प्रमाण है। किंतु इतनी विशेषता है कि अधक कर्म का स्पर्शन ओघ के समान है। ओघ में तो पूरा लोक ही बताया सब जगह। असंयत जीवों के संभव पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। असंयत में तो पहले गुणस्थान से भी सब आ गए क्योंकि संयम मार्गणा चल रही है ना। इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। अब दर्शन मार्गणा, दर्शन मार्गणा के अनुवाद से चक्षु दर्शन वाले जीवों के संभव सब पदों का स्पर्शन त्रस पर्याप्तकों के समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ केवली समुद्घात से प्राप्त होने वाला स्पर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होगा? हाँ, वहां तो चक्षु दर्शन नहीं है, केवल दर्शन है। अचक्षु दर्शन वाले जीवों के सब पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्म का अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। बाकी तो वो पूरा लोक कहेंगे ना, चक्षु एकेंद्रियों में भी होता है तो उस अपेक्षा से कहेंगे, परंतु क्रियाकर्म वाले तो ये सम्यक दृष्टि हो गए, संगी पंचेंद्रिय हो गए, तो देव की अपेक्षा 8/14 कहा। अवधि दर्शन वाले जीवों का स्पर्शन अवधि ज्ञानियों के समान है और केवल दर्शन वाले जीवों का स्पर्शन केवल ज्ञानियों के समान है। वो क के ऊपर की मात्रा स्पष्ट करना, केवल है। लेशा मार्गणा के अनुवाद से कृष्ण, नील और कापोत लेशा वाले जीवों के सब पदों का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक प्रमाण है। हमने वर्तमान में भी देखा था, ये एक इंद्रियों में 3 अशुभ लेशा ही होती है, तो पूरा लोक है उसका रहने का भी। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म का अतीत और वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है। कृष्ण, नील, कपोत वाले क्रियाकर्म वाले कहाँ पाए जाएंगे? और नरक में नरक में भी है ना, चौथे गुणस्थान वाले है ना वहां पर। क्रियाकर्म है ना, हम ऐसा वो कैसा झुकना कैसा वो उसको नहीं, समय दृष्टियों को क्रियाकर्म है इतना कहा है। इसलिए वो लोग का असंख्यात्व भाग घटित होता है। पीतलेशा में प्रयोग कर्म और समवधान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। पीतलेशा कहाँ पर है? देव में, मनुष्य और तिरियंशों में है न? ये जो इतने सारे असंख्यात द्वीपों में तो है ही है पीतलेशा सब जगह, और बाकी हम ऊपर जो कृष्ण नील वगैरह देखी थी वो मनुष्य तिरियंश और नारकी इनमें पाए जाएंगे। क्रियाकर्मों वाली की बात है। अतीत स्पर्शन ये पीतलेश की बात चल रही है। कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण और कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण है। देखो ये 8/14 भाग कल हमने देखा था, तो फिर रिपीट करती हूँ। मैं आते ही मैंने बोला था कि जो सौधर्म ईशान है, भवनत्रिक है, वो नीचे तो तीसरे नरक तक जाते हैं और ऊपर दूसरे कोई देव उनको ले जाते तो 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। वो स्वयं अपने अपने विमान ऊपर के ध्वजा दंड तक जाते हैं, परंतु उसके ऊपर जो जाते हैं तो अन्य देव उनको ले जा सकते हैं, उनके साथ जाते हैं। हाँ, लिफ्ट। तो इस तरह से वो 8/14 घटित होता है। और फिर मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 9/14, क्योंकि तीसरे नरक में गए और वहां से मारणांतिक किया तो ऊपर की 7वीं-8वीं पृथ्वी में चले गए। तो 8वीं पृथ्वी मध्य लोक से तो 7 राजू ऊपर है, और नीचे गए थे 2 राजू नीचे गए थे ना तीसरा नरक में। ये 9/14 होता है। अधक कर्म का स्पर्शन पीतलेशा में, अधक कर्म यानी पीतलेशा में अधक कर्म किसको होगा? मनुष्य तिरियंशों को, ओघ के समान है वहां तो सब लोग, इतना ही बताया उन्होंने। अधक कर्म में सब लोग ले लिया है। नहीं तो यहां पर क्या कैसे लिया था? देखो अधक कर्म का स्पर्शन, अभी देखो ओघ में क्या लिखा था उन्होंने। क्षेत्र के समान लिख दिया था, अभी हमने पढ़ा था ना उसको क्षेत्रानुगम में 98 में। कि अधक कर्म की द्रव्यार्थता प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है? सब लोक क्षेत्र है, वही यहां घटित होता है। आदेश में भी उन्होंने ऐसा ही लिखा था। देखो देखो यहां एक बात स्पष्ट लिखी, यहां पर 99 पृष्ठ की अंतिम लाइन, तथा अधक कर्म का क्षेत्र सब मार्गणाओं में सब लोक प्रमाण है, ऐसा कहना चाहिए। कोई भी मार्गणा हो तो उसका कितना है? वो पूरा लोक। यानी वो औदारिक शरीर के परमाणु फैलने पर ऐसा होगा वो, यानी वो सब जगह उसको पूरा लोक ही लिया है, क्षेत्र में कहो या स्पर्शन में कहो, वो कोई भी मार्गणा हो, वेद वाली हो या कोई भी हो। देखो हमने देखा था अधक कर्म किसको कहना, तो वहाँ प्रदेशों की संख्या ही ली है ना, वो पूरा लोक ही हो जाता है, वहाँ जीव को नहीं लेना है। एक ही जीव के वो नहीं, ये हम क्या देखते हैं? देखो अन्य मार्गणाओं में क्षेत्र लगाते तो जीवों का प्रदेश लगाते हैं, वो तो पहले भी बताया था मैंने। हाँ, और वहाँ प्रदेश किसको कहना, ये कितना प्रदेश रोकता है उसको प्रदेश नहीं कहना, वो परमाणुओं की संख्या, वो तो अनंत है। यानी जब हम जीवों के प्रदेश सुनते हैं तभी वो क्षेत्र आकाश का क्षेत्र हम देखते हैं। अब यहाँ प्रदेश किसको कहना है, हाँ, नौ कर्म वर्गणा में जो औदारिक के परमाणु है, हाँ, तो वो कितने, तो अनंत है, तो ये पूरा लोक हो जाता है। वो आकाश का कितना प्रदेश रोकता है इस तरह से हम उसका विचार करने जाते हैं, पर वो वैसा नहीं है। वो सब लोग यानी अभी वो कितने ही लोग हो जाएंगे, इसलिए वो सब लोग हो जाए। हाँ, वो पहले पढ़ाते ना, मैं अभी पढ़ के भी बताया था आपको कि द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता कहना किसको। अभी इसी को पढ़ा था ना मैंने, ये द्रव्य प्रमाणानुगम के कथन करते समय किसको क्या कहना उसकी बात हमने देखी थी। अभी हम यहाँ आगे बढ़ते हैं 106 पृष्ठ पर। तपक कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है और क्रिया कर्म का किसमें चल रही है बात, ये लेशा मार्गणा में और वो भी पित्त लेशा में। तो पित्त लेशा में तप कर्म का क्षेत्र पूरा लोक होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, शुक्ल लेशा में होगा। क्यों कहते ऐसा? क्योंकि जब पूरा केवली समुदाय करते तो उनके तो शुक्ल लेशा पाई जाती है। तो ये पित्त लेशा में तप कर्म किसके होगा? तप कर्म तो मनुष्य में ही होता है, तो पित्त लेशा कहाँ तक होती है? सातवें तक होती है ना? तो ये लोक का असंख्यात भाग यानी मनुष्य क्षेत्र ऐसा घटित होगा वहां पर। क्रिया कर्म का अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है, ये भी क्योंकि पित्त लेशा होती है नीचे के देवों में, भवनत्रिक में तो होती ही है, पर्याप्त अवस्था में पित्त लेशा ही होती है और सौधर्म ईशान में भी पित्त लेशा होती है। सनत कुमार महेंद्र में भी नीचे पीत का उत्कृष्ट अंश हो सकता है, परंतु उसकी मुख्यता नहीं है। तो ये देव नीचे तीसरे नरक तक और ऊपर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, इसलिए वो 8/14 का। लेशा में प्रयोग कर्म, समवधान कर्म और क्रिया कर्म का वर्तमान स्पर्शन पीत लेशा के समान है। नील नील शब्द है क्या वहां पर? नहीं, पद्म चाहिए। हाँ, ऊपर देखो सेकंड लाइन में अंतिम शब्द पम्मलेशा है लिखा है ना, तो ये यहाँ शब्द रह गया है। खाली लेशा में लिखा तो वहां पद्मलेशा में चाहिए। हाँ, पद्म लेशा में नहीं, क्योंकि अकेले लेशा में मैं वही सोच रही थी, ये सामान्य लेशा की बात यहाँ क्यों की?
और वो पीत बराबर है।
कौन सा? हाँ, पीत लेशा के समान है। इन्हें पहले पीत लेशा की बात बताई, अब पद्म लेशा की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे अमुक अमुक इतने कर्म पीत लेशा के समान है। कहाँ करेक्शन करना था समझ में आए? सेकंड लाइन में पद्म शब्द ऐड करना है, एक्स्ट्रा डालना है, वो शब्द डालकर अभी पढ़ेंगे। पद्मलेशा में प्रयोग कर्म, समवधान कर्म और क्रिया कर्म का वर्तमान स्पर्शन पीत लेशा के समान है। अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। वहां भी सनत कुमार महेंद्र की अपेक्षा ये ले सकते हैं। तपक कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, उसमें भी ये पद्म वाले तप वाले ने मनुष्य ही है और वो सातवें गुणस्थान के नीचे वाले। अधक कर्म का स्पर्शन ओघ के समान है, यानी हमने देखा था किसी भी मार्गणा में पूरा लोक है। किसमें? पद्मलेशा में, क्योंकि पद्मलेशा वाले जो है अभी वो एकेंद्रियों में जाएंगे नहीं। पीतलेशा वाले जो है बहुनत्रिका और सौधर्म ईशान, वही एकेंद्रिय का बंद कर सकते हैं। तो मारणांतिक करेंगे तो उनमें वो 9/14 सिद्ध हुआ था। अब ये पद्म वाले हैं तो पद्म वाले तो एकेंद्रियों में नहीं जाते हैं। ये वहाँ करेक्शन थे दूसरे लाइन में, दूसरे लाइन में जो है ना नया जो वाक्य शुरू होता है, लेशा में प्रयोग कर्म लिखा है, वहाँ पद्म लेशा में लिखना, और उसके लिए आधार है ऊपर की सेकंड लाइन अंतिम शब्द। अभी हम पढ़ते हैं, अधः कर्म की बात हुई। अभी शुक्ल लेशा में चौथी लाइन, शुक्ल लेशा में प्रयोग कर्म और समवधान कर्म का अतीत और वर्तमान कालीन स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण, कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण, लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण है। यहाँ भी अलग अलग अपेक्षा लगाई है। लोक के असंख्यात भाग प्रमाण लिखा है वो तो जहाँ रहते हैं उसकी अपेक्षा, हाँ वो बताते। तो ये लोक के असंख्यात विभाग क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर के जो शुक्ल लेशा वाले जो है ग्रहवेक है और ऊपर के, उनका विहार नहीं होता, वो अपने अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, इसलिए वो असंख्यात विभाग सिद्ध होता है। और मनुष्य और तीरेंचों में भी शुक्ल लेशा पाई जाती है, फिर भी वो सब असंख्यात विभाग होगा। दूसरी बात, कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण मारणांतिक होगा ना उनका, मनुष्य में आएंगे, मनुष्य वहाँ चले जाएंगे, वो भी मरते समय शुक्ल लेशा में मरकर ऊपर चले जाएंगे। हाँ सर्वा सिद्धि तक जा सकते हैं, वो तो पूरे ऊपर तक नहीं है ना, कुछ कम है ना उसमें, 6/14 कुछ कम 6/14 लिया है, क्योंकि उसमें भी मेजॉरिटी तो नीचे के, ऊपर के तो बहुत थोड़े हैं ना, ग्रेवेक आदि से लेकर वो समझना चाहिए। और लोक के असंख्यात बहुभाग ये तो समुदाय की अपेक्षा, और सब लोग भी समुदाय की अपेक्षा। अधक कर्म का स्पर्शन ओक के समान है, पूरा लोक है। इरियापथ और तपक कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, तथा क्रिया कर्म का स्पर्शन कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है, शुक्ल लेशा में लगाना है। भव्य मार्गणा के अनुवाद से भव्यों के सब पदों का स्पर्शन ओग के समान है। अभी भव्य तो वो पूरे एकेंद्रिय आदि में भी पड़े हैं, तो उसके अपेक्षा वो पूरा लोग भी ले सकते हैं। अभव्यों के सब पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। सम्यक्त्व मार्गणा के अनुवाद से सम्यक दृष्टि और करना उसको, और क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों में प्रयोग कर्म और समवधान कर्म, समवधान है कि समवधान है, धान आया था, दान आया था, समवधान ऊपर भी समवधान ही आया था, बराबर है ना? समवधान पहले आया था बहुत बार, समवधान है शब्द। और यहाँ दो बार धान आया, हाँ मैंने दो तीन जगह देखा ऊपर क्या है। ऊपर भी सेकंड लाइन में समवधान लिखा था। देखो सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों में प्रयोग कर्म और समवधान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण, लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण है। अधक कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक प्रमाण है, क्योंकि अभी यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। शरीर से पृथक होकर और औदयिक भाव को न छोड़कर ओ एक समय द्वारा सब लोक को व्याप्त कर स्थित हुए नौ कर्म स्कंधों के अधक कर्म भाव स्वीकार किया गया है। क्या कहते शरीर से पृथक होकर और निकलते हैं वो हाँ, और औदयिक भाव को न छोड़कर एक समय द्वारा सब लोक को व्याप्त कर स्थित हुए नौ कर्म स्कंधों के अधक कर्म भाव स्वीकार किया गया है, यानी वो फैलते हैं सब पूरे लोक में जाते हैं, ऐसा अर्थ हुआ उसका। एरियापत कर्म और तपक कर्म का यानी यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। हाँ यानी वो उसी स्कंद रूप से रहते हैं ना, औदयिक भाव को नहीं छोड़ते ने, अभी उसके जो अवस्था है उसी अवस्था में है वो, अभी जीव को तो छोड़ा परंतु वो फैल गए सर्वत्र। एरियापत कर्म और तपक कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, ये भी इसमें चल रही बात सम्यक दृष्टियों में। क्षायिक और सम्यक दृष्टि दोनों लिए ना, सामान्य भी और क्षायिक सम्यक दृष्टि तथा क्रिया कर्म का अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। वेदक सम्यक दृष्टियों के सब पदों का वर्तमान स्पर्शन ओघ के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अति स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। हाँ लोक का, अरे ओग है लोक का सॉरी, ये ओग क्या लिखा है, लोक के असंख्यात भाग है, यहाँ ओग का लिखे थे, मैंने भी ऐसे ही पढ़ लिया उसको। देखो लोयस असंख्य यदि भागो है ना ऊपर, ये भूल से वहां ओग के छप गया है। अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। अधक कर्म का स्पर्शन ओग के समान है तथा तपक कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। उपशम सम्यक दृष्टियों के सब पदों का वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान है। अति स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। अधक कर्म का स्पर्शन ओग के समान है तथा तपक कर्म और ईर्ष्यापत कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। ईर्ष्यापत कर्म किस कब होगा उनके, हाँ आकृति 14 उपशम सम्यक दृष्टि है, अकेले 11वें यानी वो वहाँ वो समुदात वाला वगैरह नहीं लेना। हाँ 8/14 उपशम सम्यक तो है, अभी वो नरक में गए हैं तो वहाँ उपशम सम्यक तो होगा कि नहीं होगा, वो स्पर्शन है ना अतीत की अपेक्षा, वहाँ जाकर भी किसी को होता है उपशम सम्यक दर्शन। ये पहले हमने स्पर्शन वाला जो अधिकार पढ़ा था तभी ये प्रश्न आया था, तो उस काल में उनका गमन होता है ऐसा भी वहां पर आया था। नहीं क्यों जाएंगे, नीचे गमन होता ही नहीं तीसरे के नीचे किसी का, नहीं कोई भी मिथ्या दृष्टि होगा, समय दृष्टि होगा, तो वो गमन करके वहां तो तीसरे नरक तक ही जा सकता है। उनका कहना था नीचे छठे नरक तक जाएगा कि नहीं देव, हाँ देव तीसरे तक ही, देव की बात चल रही है, देव गमन करने वाले की बात चल रही है, गमन करने वाले देवों की अपेक्षा बात की। श्रेणी में मरण होगा, हाँ ऊपर जाएंगे ना, सर्वार सिद्धि तक जाएंगे। हाँ मैंने सर्वार सिद्धि बताया, सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं, हाँ या अनुदिशों में ही अनुत्तरों में ही जाते हैं मुख्यतः, तो साधन समय दृष्टियों के सब पदों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। अतीत स्पर्शन, अभी साधन समय दृष्टि ने वो संगी पंचेंद्रिय समझना तो उसकी अपेक्षा से सोचना उसको। अतीत स्पर्शन कुछ कम 12/14 भाग प्रमाण है। नीचे सातवें नरक तक हो गए सासाधन, और ऊपर ग्रेवेक तक हो गए ना, ऊपर भी 6 राजू और नीचे भी 6 राजू, तो नारकी जो है छठे नरक तक के नारकी सासाधन अवस्था में मारणांतिक करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ करेंगे। छठे वाले मनुष्य तीर्यंच सासाधन के सासाधन में मरकर नरक में नहीं जाते, पर नारकी सासाधन में मरकर मनुष्य में आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने छठे नरक की बात की, सातवें वाला तो मिथ्यात्व अवस्था में ही जाके आयु बांधता है, फिर मारणांतिक भी उसका मिथ्यात्व अवस्था में होगा, इसलिए सासाधन के लिए वो छठे नरक तक की बात की। देखो अतीत स्पर्शन कुछ कम 12/14 भाग प्रमाण है, अधक कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। क्या हाँ सासाधन में नहीं होगा, होता ही नहीं, मिथ्या तो में ही होता है, इसीलिए वो छठे तक की बात की मैंने। अधक कर्म का स्पर्शन क्षेत्र के समान है पूरा लोक। सम्यक मिथ्या दृष्टियों के दो पदों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। स की बिंदी स्पष्ट करना है वहां पर। अति स्पर्शन कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। दो ही ने वो तो प्रयोग कर्म और समवदान। अधक कर्म का स्पर्शन ओक के समान है। मिथ्या दृष्टियों के सब पदों का देखो, सम्यक मिथ्या दृष्टि है तो उसमें कौन कौन से कर्म होंगे वो पहले देखते हैं। प्रयोग होगा, समवदान होगा, अधक कर्म होगा, इरियापद कैसे होगा, नहीं होगा, क्रिया कर्म भी नहीं होगा और तप कर्म भी नहीं होगा, तो पहले दो तो लिए उन्होंने, और अधक कर्म कहते ओक के समान है उन्हें पूरा। मिथ्या दृष्टियों के सब पदों का स्पर्शन ओक के समान है। अब यह विशेषार्थ लिखते हैं, यहाँ सासाधन सम्यक दृष्टियों के कुछ कम 12/14 भाग प्रमाण स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा का है। देखो आया ही बात, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था इसको पहले, क्योंकि इनका मेरु मूल से नीचे पांच राजू यानी ये छठे नरक और ऊपर सात राजू स्पर्श देखा जाता है। ऊपर सात राजू कैसा लिया? शेष कथन सुगम है। पृथ्वी का एक में जाने वाले लिए सातवें राजू में आता है ग्रेवेक। अच्छा अच्छा सातवें राज्य में है ग्रेवेक तक, इसलिए सात राज्यों ने ग्रेवेक तक। अभी संगी मार्गणा के अनुवाद से संगियों के संभव सब पदों का स्पर्शन चक्षुदर्शनी जीवों के समान है तथा असंगी जीवों के संभव सब पदों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। आहार मार्गणा के अनुवाद से आहारकों में सब पदों का स्पर्शन ओग के समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ केवली समुद्घात संबंधी स्पर्शन नहीं होता। वो केवली समुद्घात प्रतर और लोकपुराण में वो अनाहारक है ना, तो यहाँ आहारकों की बात है। अनाहारकों के संभव पदों का स्पर्शन कार्मण कायोगी जीवों के समान है। इतनी विशेषता है कि तपक कर्म का स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण है। ये भी वो केवली समुदाय की अपेक्षा लिया है। इस प्रकार स्पर्शन अनुगम समाप्त हुआ है। अभी थोड़ा हर्ष हो जाएगा। हाँ, वो स्पर्शन का हिसाब करते करते बहुत डिफिकल्ट होता है। अब कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। अभी वो क्षेत्र को थोड़ा बाजू रखेंगे, अभी काल की सोचेंगे, इन कर्मों में काल घटित करेंगे। तो ओग निर्देश और आदेश निर्देश, इसमें भी सामान्य से बताएंगे काल कितना है और फिर विशेष से मार्गणाओं में बताएंगे। ओग से प्रयोग कर्म और समवधान, सब जगह समवधान ही लिखा है। हाँ, समोदान समवधान दोनों हो सकेंगे, पता नहीं। हाँ, और यहाँ भी ऊपर जो प्राकृत में समोदान लिखा है, हम तो दा करेंगे उसको। देखो क्या कहते हैं, प्रयोग कर्म और समोदान कर्म का कितना काल है, तो नाना जीवों की अपेक्षा क्या होगा? सब काल है ना। अभी कभी ऐसा नहीं होगा कि सब जीव चले गए मोक्ष में और कोई योग वाले भी नहीं बचे और कर्म ग्रहण वाले भी नहीं बचे। और एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत काल है, क्योंकि अभवियों के इन कर्मों का अंत नहीं होता। एक जीव की अपेक्षा अगर अनादि अनंत भी घटित होता, सब काल है यानी क्योंकि हमेशा ही वहां नाना जीव होंगे, इसलिए सब काल लिया। और एक जीव यानी कोई अभव्य है, अनादि से ही कर रहा है, अनंत काल तक रहेगा, इसलिए उसको अनादि अनंत का। अब कहते हैं अनादि शांत भी है किसी जीव को, अनादि से तो सबको है, और जो भव्य मोक्ष चला जाएगा उसका तो शांत हो जाएगा, तो अनादि शांत का, क्योंकि सिद्धि को प्राप्त होने वाले भव्यों में इन कर्मों का अंत देखा जाता है। ये कर्मों का कितना काल है, इतनी बात है। अधक कर्म का काल कितना है, यहां भी नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। अधक कर्म की बात है, ये जघन्य काल कैसे घटित करते हैं वो अभी बताएंगे। क्योंकि जो स्कंद जीव से निर्जीर्ण होने के प्रथम समय में, पहले भी ये बात आई थी ना, जीव से छूट गया प्रथम समय में, औदारिक रूप से रहते हैं, और दूसरे समय में औदारिक नौ कर्म भाव का त्याग कर देते हैं, उन स्कंदों में अधक कर्म का एक समय काल उपलब्ध होता है। यानी कुछ कर्म तो एक समय में वो औदारिक रूप का त्याग कर देते। उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, काल की बात है। क्योंकि जो नौ कर्म स्कंद जीव से निर्जीर्ण हो जाते हैं उनका औदयिक भाव को, यहाँ औदयिक कहा, ऊपर औदारिक कहा था, ऊपर क्या लिखा है, पहले भी औदयिक भाव हो, औदय भावम अचंडीय चौथी लाइन में, उसी को औदयिक भाव कहा शायद, क्योंकि जो नौकर्म स्कंद जीव से निर्जीर्ण हो जाते हैं उनका औदयिक भाव को न छोड़कर उत्कृष्ट अवस्थान, यानी वो औदारिक नौकर्म रूप से ही रहने का उत्कृष्ट अवस्थान असंख्यात लोक प्रमाण काल तक पाया जाता है। हम जीवों में औदयिक भाव किसको कहते हैं? अपना विकार जो है, बराबर। अभी ये जो औदारिक शरीर के नौकर्म स्कंद बने हैं ना, वो उनका औदयिक भाव हो जाएगा। उसी स्कंद रूप से रहे हैं वे, वो अन्य स्कंद रूप से नहीं हुए। आहार वर्गणा जो है, नौकर्म रूप वर्गणा हुए, नौकर्म रूप बने हैं ना वो, और अभी छूट गए। जैसे हमारे बाल झड़ गए तो औदारिक शरीर रूप हुए थे, और वो रह जाएंगे ऐसे। हड्डी जो है, अभी औदारिक शरीर के परमाणु अलग अलग ले लेना कुछ, ये यहाँ तो एक्चुअली वैसी नहीं बात है, वो तो निर्जीर्ण हुए परमाणु कहाँ तक रह सकते उसकी बात है। तो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक पाया जाता है कहते हैं। वर्गणा रूप से रहना, हाँ, ये जो वर्गणाएं छूटती रहती है, हर समय अनंत छूट रही है, तो वे उसी रूप में कितने काल तक रह सकती, ये बात है, ये बात नहीं है अपने लिए। यानी असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहती है, और उसका क्षेत्र हमने देखा था लोक प्रमाण, सब लोग, यानी वो छूटकर सब लोग में व्याप्ति, ऐसा अर्थ हो सकता है। काल, देखो आपका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, असंख्यात लोक प्रमाण काल किसको कहना, बराबर। देखो काल तो या तो हम समयों में मापते हैं या प्रदेशों में भी मापते हैं। कैसे मापते हैं प्रदेशों में? कि जितने प्रदेशों की संख्या होगी उतनी समयों की संख्या समझना। जैसे हमने पहले एक बार देखा था अंगुल का असंख्यात भाग वाला जो क्षेत्र का प्रमाण है, यानी क्षेत्र के माप से काल को मापना कहते हैं इसको, क्षेत्रमान से काल का प्रमाण कहना। पल्ले को कह देते हैं तो वहां तो हम समय गिनते हैं रोमों की खंडों से, बराबर है ना। और यहाँ जो अंगुल का असंख्यात भाग कहेंगे तो क्षेत्र से हमने वहां काल गिना। प्रदेशों की संख्या है ना, अंगुल के असंख्यात भाग में जितने प्रदेश है उतने समय वाला काल वो कितना होता है, तो असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी होती है। असंख्यात लोक नहीं होता, वो तो अंगुल का असंख्यात भाग हुआ। अभी अंगुल कितना छोटा है, लोक में ऐसे अंगुल असंख्यात आ जाएंगे। अंगुल के आगे असंख्यात 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 बार वर्ग करो तो एक लोक आएगा, और ऐसे असंख्यात लोक तो वो कितना बड़ा काल है। नहीं समझे अभी भी आप? फिर से दोबारा कन्फ्यूजन है थोड़ा, फिर से देखते। देखो हमें तो समयों की संख्या गिननी है, तो समयों की संख्या तो डायरेक्ट हम समयों की संख्या में ही बताएंगे। जैसे असंख्यात समयों के लिए हम कहेंगे आवली है, तो कहेंगे जघनयुक्ता संख्यात इतने समय है। आवली बहुत छोटी माप, छोटा माप होता है, तो हमको बड़ा माप चाहिए तो हम पल्ल के अपेक्षा बात करेंगे। वहाँ उपमा देके समझाए ना, वो भी असंख्यात का प्रमाण है। और बड़ा चाहिए तो सागर कह दिया, और बड़ा चाहिए तो ऐसे असंख्यात पल्ल कहेंगे हम। और जाते 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 अंगुल नाम का एक माप है, वो है तो क्षेत्र नापने का यूनिट, परंतु वहाँ भी संख्या ही काउंट करते ना, तो उतनी संख्या में हम समय गिनेंगे। उतने समय समझना है, यानी वो कितना ज्यादा है वो समय, वो काल में ट्रांसफर करने के लिए मैंने बताया अंगुल का बीच में। अंगुल को हमके बहुत छोटा लगता है, परंतु अंगुल के असंख्यातवे भाग जब काल बीत जाता है तो उसमें उतने काल में कितना बड़ा है अंगुल, असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाती है। क्योंकि एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाए तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं, यानी पल्ले के आगे जो पल्ले स्क्वायर है और बीच में वो सागर वगैरह कुछ माप है तो उसमें ये आ जाए, तो अंगुल तो उसके आगे कितने ही वर्ग स्थान जाने पर अंगुल की संख्या आती है। हाँ, तो अंगुल से लोक कितना बड़ा है ये तो हम इमेजिन कर सकते हैं ना। आप उसमें माइक भी बोलना है। हाँ, देखो तो यहाँ काल हमने लोक प्रमाण में गिना है, असंख्यात लोक प्रमाण काल है। ईर्ष्या पथ कर्म और तप कर्म का कितना काल है, तो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, और एक जीव की अपेक्षा जगन। देखो ईर्ष्या पथ कर्म का काल सब काल कैसे सिद्ध करोगे आप? हाँ, कैसे सिद्ध करेंगे? उसमें अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, 13वें गुणस्थान की अपेक्षा, क्योंकि 11वां गुणस्थान तो हर समय नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा भी 11वां कहो, 12वां कहो या 14 कहो, हर बार नहीं, उसमें अंतर पड़ सकता है। परंतु 13वां गुणस्थान तो कायम है, निरंतर मार्गणा है, वो 13वें गुणस्थान का कभी भी यानी लोप नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये मनुष्य लोक में तो 13वें गुणस्थान वाले पाए जाएंगे ही, सर्वज्ञ तीर्थंकर भी और सर्वज्ञ भी, सभी काल होगे, सदा काल होगे। इसलिए उसको नाना जीवों की अपेक्षा सदा काल लिया, सब काल लिखा है ना। तपक ये तो करना नहीं हो के हर पन्ने पन्ने में हर लाइन में सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाती है। तो ईर्ष्या पथ कर्म सदा काल लिखा है ना, सब काल है उसका। तप कर्म का भी कितना काल है, तो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। तप कर्म में तो ये छठे से भी ले सकते हैं, छठे सातवां गुणस्थान भी निरंतर मार्गणा है, और तप कर्म में 13वें भी आते हैं, उसकी अपेक्षा भी ले सकते। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल ईर्ष्या पथ कर्म का एक समय है। एक समय कैसे घटित करोगे? हाँ, बोलो। 11वें गुणस्थान में आते ही मरण हुआ एक समय में, तो एक समय घटित होगा एक जीव की अपेक्षा, बराबर है ना। और तप कर्म का जगन्य काल ईर्ष्यापद कर्म का एक समय, और तप कर्म का अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो उपशांत कषाय जीव ईर्ष्यापद कर्म के साथ एक समय रहकर दूसरे समय में देवों में उत्पन्न हुआ है, उसके ईर्ष्यापद कर्म का एक समय काल उपलब्ध होता है। तप कर्म का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि दृष्ट मार्ग 28 प्रकृतियों के सत्कर्म वाला जो मिथ्यादृष्टि जीव संयम को ग्रहण कर सबसे जघन्य काल द्वारा असंयम को प्राप्त होता है, उसके तप कर्म का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त उपलब्ध होता है। ये समझ में आया दृष्ट मार्ग क्या होता है? नहीं पता? देखो, जिसने मार्ग देख लिया है उसको कहते हैं दृष्ट मार्ग। एक बार सम्यक तो प्राप्त कर लिया है या मुनि पद अंगीकार किया है, संयम प्राप्त किया, अभी कोई संयमी जीव है, छठे सातवें गुणस्थान वाला है, तो छठे से वो छठा छूटकर नीचे चला गया, मान लेते चौथे में गया और या और भी नीचे चला गया, एक ही अंतर्मूर्ति फिर लौटा, अंतर्मूर्ति में लौटा बाद में भी लौटा, परंतु वो इसमें आया, छठे सातवां किया, अंतर्मूर्त तक तो करेगा ही, क्योंकि आते ही तो सातवें में आता है, फिर सातवां छठा हजारों बार होता है, और फिर छठे से छूट कर नीचे चला गया, तो ये भी कम से कम पॉसिबल छठे सातवें का जो काल है वो तप कर्म का जघन्य काल बताया। तो दृष्ट मार्ग क्योंकि उसको बहुत बार समय ऊपर नीचे गिरा है और ऊपर चढ़ा है, इसलिए उसको अल्प काल में वो नीचे आ सकता है, इसलिए उसको दृष्ट मार्ग को यहाँ लिया। सातवें में पहले में वो सातवें में मरण नहीं होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ा है उपशम के साथ अगर आया होगा तो सातवें में मरण होगा ही नहीं, अन्यथा तो सातवें में मर सकता है। उपशम के साथ जो सातवें में आया है तो छठे सातवां चला गया, उस उपशम काल में उसका मरण नहीं होगा, परंतु वेदक यहाँ जो दृष्ट मार्ग वाला लिया है वो तो वेदक सम्यक दृष्टि है। हाँ देखो, 28 प्रकृति का सत्कर्म वाला यानी सत्ता में है। कौन सी 28 प्रकृतियाँ? मोनीय की। हाँ, 28 प्रकृतियों सत्ता में पड़ी है। सत्कर्म ने सत्ता में जो है, देखो यहाँ क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि को ऊपर चढ़ाया है। देखो क्या इनका प्रश्न था, क्षायिक में घटित होगा। हाँ देखो, यहाँ ये इसलिए लिया है क्योंकि उसको फिर नीचे गिरता है ना, क्या क्या, हाँ करण परिणामों में मरण नहीं होता है, परंतु यहाँ वेदक समय दृष्टि वहाँ प्राप्त हुआ तो करण परिणाम कहाँ रहा उसका? जब सातवां प्राप्त होता है तो करण परिणाम मिट जाते हैं, जो इसीलिए ये कौन सा जीव लिया देखो, फिर इसको पढ़ते हैं, तप कर्म का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। अभी कौन सा जीव ये छठे सातवें में जा रहा है, क्योंकि दृष्ट मार्ग 28 प्रकृतियों के सत्कर्म वाला जो मिथ्या दृष्टि जीव, इतनी बातें ली ना, 28 वाला है, 28 वाला है यानी वो उपशमी वाला तो है ही नहीं है, 28 वाला भी उपशम कर सकता है, नहीं ये बात नहीं है, परंतु वो दृष्ट मार्ग वाला है यानी वो अभी नीचे आया है और अभी झट से ऊपर जा सकता है, 28 की सत्ता वाला भी उपशम कर सकता है क्योंकि सात कर्मों का उपशम करके वो चढ़ सकता है, तो ये दृष्ट मार्ग है यानी रिसेंटली वो आया है नीचे मार्ग देखकर। ये वो काल में फर्क पड़ेगा ना, इसलिए उपशम सम्यक की बात क्यों है, वो आठवें के पहले समय में नहीं है, मरेगा तो यहाँ ये तप कर्म उसको छठे में हम लेते हैं ना, वो तप कर्म हम छठे में लेते हैं, क्रियाकर्म, ओ तप कर्म तो सब जगह, सॉरी तप कर्म सबको लेना, क्रियाकर्म नीचे, तो यहाँ वो अंतर्मूर्त तक तो वहाँ होता है ना, वो तो क्योंकि वहाँ विशुद्धि बहुत ज्यादा है ना अंतर्मूर्त तक, मतलब सातवें में भी एक समय में तो मर सकता है, इसे ग्यारहवें में मर सकता है, सातवें में क्यों नहीं मरेगा, आठवें के पहले भाग में मरण नहीं है। हाँ, उसको क्यों नहीं लिया, इसे आप कहते हैं, तो सबसे जघन्य काल द्वारा असंयम को प्राप्त होता है, उसके तप कर्म का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त उपलब्ध होता है। असंयत समय दृष्टि और संयता संयत जीव को संयम में ले जाकर यह काल ले आना चाहिए। लिखा है यहाँ, यानी जैसे यहाँ मिथ्या दृष्टि को उसमें ले गए, वैसे चौथे से या पांचवे से भी वहाँ जाकर फिर नीचे गिरता है तो भी ये घटित होगा अंतर्मूर्ति, ऐसा बताते हैं। तथा दोनों का उत्कृष्ट काल, अभी जघन्य काल तो बताया किस किस का, इरियापद का और तपकर्म का, और दोनों का उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है, क्योंकि इरियापथ वाला है। अभी पूर्वकोटि प्रमाण कब सिद्ध होगा, तेरहवें में सिद्ध होगा। इरियापथ कब हो, 11, 12, 13, 14, तो उसमें इतना लंबा काल तो 12वें का नहीं हो सकता है, तो 13वें का ही घटित होगा। तो 12वें में गया तब से काउंट करेंगे हम उसको मोक्ष जाने तक, वो इरियापथ वाला ही होगा। 13वें के अंत तक वो कुछ कम में वो 8 साल निकाल लेना उसके। हाँ, क्योंकि जो शाही समय दृष्टि देव और नारकी जीव मरकर पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर गर्भ से लेकर 8 वर्ष और अंतर्मूर्त के बाद संयम को ग्रहण कर तपक कर्म को प्रारंभ करके पुनः अंतर्मूर्त द्वारा क्षीण कषाय गुणस्थान को प्राप्त होकर इरियापद कर्म को प्रारंभ करके सयोगी होते हैं, और वहां पर अंतर्मूर्त और 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि काल तक पूरी तरह से इरियापद कर्म और तपक कर्म का पालन कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। देखो तप कर्म तो यहाँ भी लेना हो, हमने वो क्रिया कर्म के बारे में हमने 6ठे में बताई थी, तप कर्म तो वो तो 14वें तक है, 6ठे से लेकर 14वें तक। उन जीवों के उक्त दोनों कर्मों का यह उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। अब क्रिया कर्म की बात अब बताएंगे, क्रिया कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो मिथ्यादृष्टि या सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होकर और सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल तक वहाँ रहकर पुनः मिथ्यात्व या सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, उसके इस जघन्य काल की संभावना देखी जाती है। उत्कृष्ट काल सादिक 66 सागर है, क्योंकि कोई एक तिर्यंच मिथ्यादृष्टि या मनुष्य मिथ्यादृष्टि दृष्टि व दृष्टि जीव एक पूर्व कोटि कम 14 सागरोपम आयु वाले लांतव कापिष्ठ देवों में उत्पन्न हुआ, फिर वहां प्रथम सागरोपम में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर तीनों ही कर्णों को करके प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, यानी प्रथम उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। फिर उपशम सम्यक्त्व के सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल तक उसके साथ रहकर दूसरे सागरोपम के प्रथम समय में वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, यानी एक सागर बीत गया तो उसके अंतिम अंतर्मूर्त में उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया। उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हुआ तो उसका दूसरा सागरोपम शुरू हुआ, तो वो वेदक सम्यक्ति हुआ। फिर कुछ कम 13 सागरोपम काल तक सम्यक्त्व का पालन करते हुए मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और वहां संयम को ग्रहण कर पुनः आगामी मनुष्यायु के प्रमाण से कम 22 सागरोपम की आयु वाले आरण अच्युत देवों में उत्पन्न हुआ। फिर पूर्वकोटि प्रमाण आयु को बांधकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, ये जो 22 सागर है ना उसी में वो मनुष्य की आयु उसी में गर्भित धरना, यानी उतना वो कम वहाँ की आयु बांधी और वो रिमेनिंग आयु मनुष्य में बिताए, यानी पहले 13 सागर हुए ना और अभी 22 सागर।
तो
सम्यक दर्शन के साथ आया है ना वो, तो उसका तो कंटिन्यूस है अभी। सम्यक दृष्टि है, उसके क्रियाकर्म है, वो शरीर की क्या क्रिया करता है उसकी बात नहीं है यहाँ पर। तो गर्भावस्था में भी उसको लेना है और विग्रह गति में भी, उसका भी अंतर नहीं गिना यहाँ। तो वह संयम को प्राप्त होकर पुनः आगामी मनुष्यायु के प्रमाण से न्यून 31 सागरोपम आयु वाले उपरिम ग्रेवेक देवों में उत्पन्न हुआ। देखो पहले 13 सागर, फिर 22 सागर और अभी 31 सागर, फिर पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और संयम का पालन करते हुए आयु में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ। फिर मरकर 33 सागरोपम आयु वाले सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों में उत्पन्न हुआ। फिर पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और वहाँ जब सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल द्वारा सिद्ध हुआ तब अपूर्व करण क्षपक हुआ। यहाँ इसका क्रियाकर्म नष्ट हो जाता है, क्षपक हुआ ना अभी, उसका श्रेणी चढ़ी तो उसका क्रियाकर्म नष्ट हुआ। फिर प्रारंभ में हुए उपशम सम्यक्त्व के सबसे बड़े काल को लाकर उसे अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय क्षीण कषाय और सहयोगी गुणस्थान के सबसे जघन्य काल से न्यून एक पूर्व कोटि प्रमाण काल में मिलाने पर साधिक एक पूर्व कोटि प्रमाण काल होता है। इस प्रकार क्रियाकर्म का साधिक पूर्व कोटि और 33 सागरोपम अधिक 66 सागरोपम प्रमाण काल उपलब्ध होता है। वो साधिक 66 सागर कहे ना, तो उसमें वो अंतिम बहु के पूर्व कोटि में वो कुछ कम करके उसको सबको ले लेना। देखो देखो पहले क्या लिखा था। हाँ तो वहाँ 13 और ये 22 35 हो गए। हाँ ये पहले जो 66 सागर है वो वेदक सम्यक्तों का अधिक से अधिक काल लिया। वेदक सम्यक्तों में 66 सागर का काल है, अभी वेदक में से वो क्षायिक हो गया। वेदक समय तो का अधिक से अधिक काल उतना था, हाँ अभी क्षायिक हो गया वो, अब क्षायिक में वो ये साधिक में इतना सब साधिक लिया, ये आगे का जो है ना। देखो 66 सागर वेदक समय तो का मैक्सिमम काल, उसमें क्षायिक का मैक्सिमम काल मिला दिया। क्षायिक का मैक्सिमम कितना है, पूर्व कोटि अधिक 33 सागर, क्योंकि इस भव में उसने क्षायिक समय तो प्राप्त किया था, फिर उसके साथ वो सर्वार्थ सिद्धि में गया, 33 सागर वहां रहा और फिर वापस पूर्व कोटि के मनुष्य भव में आया, इस तरह से वो सिद्ध हुआ मैक्सिमम। नष्ट हो जाता है यानी अभी उसके क्रियाकर्म नहीं रहा, वो तप कर्म वगैरह चालू हो जाता है, ये श्रेणी में नहीं होता क्रियाकर्म। क्षपक हो उपशम हो, चार ते सात, हाँ तप कर्म तो 6 से लेकर 14 तक है और इरियापद कर्म 11 से लेकर आगे है और क्रियाकर्म तो नष्ट हो जाता है श्रेणी चढ़ती है तब। एक शायक हुआ ना इसलिए उसने पहले उपशम ही था, पहले उपशम सम्यक तो में डाला उसको, उपशम के बाद वो वेदक हुआ और वेदक के बाद शायक हुआ, तो ये उपशम का काल भी क्रियाकर्म में गिना, वेदक का पूरा काल भी क्रियाकर्म में गिना और क्षायिक का भी गिना, ये तीनों को मिलकर लिया। यानी इसका अर्थ होता वो उपशम सम्यक्ति होने के बाद वो कंटिन्यूअस सम्यक दृष्टि ही रहा। ये अधिक से अधिक उन्होंने डिराइव किया है, करके दिखाया है। अब आदेश की अपेक्षा बात करेंगे। साधिक 66 वेदक का काल है, देखो इसीलिए उन्होंने उपशम सम्यक्त्व का भी मैक्सिमम बड़ा अंतर्मूर्त लिया था। यहाँ देखो फिर इसको 110 पृष्ठ पर पहले लाइन में क्या किया, प्रारंभ में हुए उपशम सम्यक्त्व के सबसे बड़े काल को लाकर उसको अधिक में लिया ना, फिर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सुपुरुष सांप्राय क्षीण कषाय और सहयोगी गुणस्थान के सबसे जघन्य काल से न्यून, इनको न्यून कर देना, किसमें अंतिम पूर्व कोटि में से इसको कम करना, क्यों, क्योंकि तभी क्रियाकर्म नहीं रहा था, इसलिए उपशम सम्यक्त्व के काल को तो ऐड करना, और ये पूर्व कोटि वाला आठवें गुणस्थान से लेकर आगे के सभी गुणस्थान उसको पूर्व कोटि में से माइनस करना, वो भी कम से कम छोटे में छोटे काल वाले सब लिए। तो उसमें पूर्व कोटि में मिलाने पर साधिक एक पूर्व कोटि प्रमाण काल होता है। इसमें कुछ बात समझ में आई? आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां तेरहवां चौदहवां सब मिलकर काल उपशम सम्यक्त्व के काल से छोटा है, तभी तो साधिक पूर्व कोटि होगा ना, नहीं ख्याल में है? देखो यहाँ क्या किया, उपशम सम्यक्त्व का काल मिलाना, एक पूर्व कोटि में उपशम सम्यक्त्व का काल मिलाना और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 का काल घटाना, फिर भी वो साधिक पूर्व कोटि होता है। ख्याल में है ना, उपशम सम्यक्त्व का काल कितना बड़ा, यानी उसमें भी छोटा बड़ा काल हो सकता है, परंतु इसमें तो ये सिद्ध है, नहीं तो साधिक पूर्व कोटि कैसे हो जाता। तो ये साधिक पूर्व कोटि हुआ, हाँ अभी साधिक पूर्व कोटि और 33 सागर, वो पूर्व कोटि में जो साधिक किया तो उपशम का था, क्योंकि उसमें वो क्षायिक वाला माइनस कर दिया था आठवीं गुणस्थान से आगे। पूर्व कोटि में साधिक कैसे किया, पूर्व कोटि में आठवें से चौदहवें का काल घटाया और उपशम का काल मिलाया, फिर भी साधिक हुआ है, तो वो उपशम का काल था। फिर ये पूर्व कोटि वाला क्षायिक का था और जो 33 सागर वाला वो भी क्षायिक का है। पूर्व कोटि वाला क्षायिक था, पूर्व कोटि और 33 सागरोपम है, वो साधिक वाला वो पूर्व भोग का जो स्टार्टिंग में था वो उपशम वाला। और 66 सागरोपम वो वेदक का हुआ। अब हम आदेश से बात करेंगे, शुरू करेंगे, अभी 4-5 मिनट है। आदेश से गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में नारकियों में प्रयोग कर्म और समवधान कर्म का कितना काल है, अभी वो धार रखना है कि दार रखना है, देखो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, क्योंकि नारकी हमेशा ही रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, क्योंकि वो तो वहाँ की आयु की बात देखेंगे। क्रियाकर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है सम्यक दृष्टियों का। एक जीव की अपेक्षा अधिक से अधिक सम्यक्त्व का काल कितना होगा वहाँ पर, हाँ कुछ कम, 33 सागर में कुछ कम, क्योंकि जन्म से वहां मिथ्या दृष्टि था, तो बाद में सम्यक तो प्राप्त किया, और जब मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले वो फिर मिथ्यात्व में गया। तो देखो, नाना जीवों की अपेक्षा सबकाल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि जो दृष्ट मार्ग जीव, ये दृष्ट मार्ग क्यों बार बार लिखते हैं, क्योंकि जो पहले बार करता है उसका काल बड़ा है, और जो बार बार सम्यक में मिथ्यात्व में चला आता है तो उसके जघन्य काल में वो फिर सम्यक तो छूट भी सकता है उसका, इसलिए दृष्ट मार्ग लिया। दो करण में जा सकता है वो, एक बात है, और फिर वो अल्प काल में फिर उसका छूट सकता है, ये दोनों ही बातें वहां होती है। करण का काल कितना, दो करण हो या तीन करण हो, सम्यक भी तो हम उसको सम्यक तो प्राप्त होने के बाद कहेंगे, तो बाद वाला जो काल है वो अंतर्मूर्त छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए दृष्ट मार्ग वाला लिया। दृष्ट मार्ग जीव मिथ्या दृष्टि या सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से आकर चाहिए, आकार हुआ है, और सम्यक को ग्रहण कर सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल तक वहां रहकर पुनः अन्य गुणस्थान को प्राप्त होता है, उसके क्रिया कर्म का सबसे जघन्य काल उपलब्ध होता है। उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है, अभी हमने घटित किया था ना इसको, क्योंकि 28 कर्मों की सत्ता वाला जो चिरंचिया मनुष्य पर्याय से आकर यह 28 सत्ता वाला लिया है, यानी सादी मिथ्या दृष्टि लिया, और नीचे क्योंकि दृष्ट मार्ग वाला लिया था ना, और नीचे सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होकर, तो क्या दूसरे जीव वहां सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी बात नहीं है, प्रथम ऑप्शन सम्यक तो वहां भी हो सकता है, परंतु हमको तो 33 सागर का मैक्सिमम काल घटित करना है, तो इसीलिए वो वेदक वाले को लिया। नीचे सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होकर 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर और विश्राम करके विशुद्धि को प्राप्त होने के बाद वेदक सम्यक्त को प्राप्त करके क्रियाकर्म को प्रारंभ करता है, तदनंतर क्रियाकर्म के साथ 33 सागर काल तक रहकर जब आयु में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहता है तब मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, उसके यहाँ क्रियाकर्म नष्ट हो जाता है, तदनंतर आगामी आयु का बंध करके और विश्राम करके नरक से निकलता है। इस प्रकार आदि के 3 और अंत के भी 3, इस प्रकार 6 अंतर्मूर्त से न्यून, पहला अंतर्मूर्त पर्याप्तियों के, फिर विश्राम का, और फिर सम्यक तो प्राप्त करने का, 33 सागर क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। रुकेंगे अभी यहीं पर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई